सारे सत्पुरुष तो एक ही निर्णय दे रहे हैं, जीव के लिए जो सांसारिक जीवन है ये उसके लिए दुख रूप है, जिसको उपनिषद कह रहा है दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत। मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है, इसलिए वो जीने का तरीका बता रहे हैं, जीने का रास्ता बता रहे हैं। काम भोगान निवर्तयेत, क्योंकि मनुष्य के दुख का कारण कामना ही है, इसलिए जीने का रास्ता बता रहे हैं कि कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। निर्णय बड़ा स्पष्ट है सत्पुरुषों का तो, कि संसार दुख रूप है और वो दुख मनुष्य की कामनाओं की ही उपज है, इसीलिए यदि इस दुख से निवृत्ति पानी है तो काम भोगान निवर्तयेत, कामना और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। ये डायरेक्शन है मनुष्य के जीवन की, मनुष्य की उन्नति की। लेकिन जो संसारिक चलन है वो होते तो दुखी हैं, लेकिन आशा उनके मन के अंदर सुख की ही पलती है, इसलिए उनका सारा प्रयास एक ही डायरेक्शन में होता है कि कामनाओं और भोगों की वृद्धि करो। तो संसारियों के जो जीवन का रास्ता है वो सत्पुरुषों के निर्णय से बिल्कुल उलट है, इसलिए सत्पुरुष का जीवन देखो तो निरंतर उसका जीवन शांति की ओर अग्रसर हो रहा है, और जब उनके अंदर कामना पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो वो आत्मस्थित हो जाते हैं, अर्थात उस आनंद रूप ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो संसारी लोग जैसे जैसे कामना भोगों की वृद्धि करते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, इनके जीवन के अंदर निराशा सी आ जाती है। क्यों? क्योंकि सारे कर्म तो देह से करने हैं ना, देह ही जवाब देने लगती है, देह की सामर्थ्य नहीं रहती। और यदि बड़ी मेहनत करके कहीं सफलता प्राप्त कर भी ली संसार में, जो पैसा इकट्ठा कर लिया, भोग इकट्ठे कर लिए, तो क्या देखते हैं कि अब उनको भोगने की शरीर की सामर्थ्य नहीं रही। पहले तो पैसा कमाते रहे, स्टडीज करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, और इस प्रयास में शरीर ढीला पड़ गया, अब उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं रही कि जो पैसा मैंने इकट्ठा किया, भोग इकट्ठे किए, अब उनको भोग सकूं, इसलिए इनका जीवन निराशा में चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीच बीच में सुख नहीं मिलते, लेकिन सुख उनके यदि देखे जाए तो वो इसी प्रकार के होते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति रेगिस्तान में यात्रा कर रहा हो, बड़ी उसको गर्मी लग रही है, मन बड़ा बेचैन है गर्मी से, लेकिन कुछ दूर पर उसको एक वृक्ष दिखाई पड़ता है हरा भरा, इस आशा में कि यहाँ जब पहुँचूंगा मैं तो मुझको सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। वो इस आशा में वहाँ तक पहुँचता है, उसके नीचे पहुँचकर वो शांति पाता है, या उसको कुछ ठंडक मिलती है, कुछ सुख मिलता है। लेकिन यात्रा तो रेगिस्तान की है, वो सुख कितनी देर रहने वाला है। तो हमारे भी जीवन में सुख के पड़ाव आते हैं, उनकी हालत ऐसी ही होती है। सारी जिंदगी हमने रेगिस्तान की ही यात्रा करनी है, बीच बीच में हरियाली आ जाती है, कुछ सुकून मिलता है। लेकिन यात्रा हमारी रेगिस्तान की ही है जिसका अंत मौत है। तो जो आशा का लेवल आशा का जीवन लेकर हम जी रहे हैं, वास्तव में निराशा का जीवन है। इसीलिए सत्पुरुषों का निर्णय फाइनल है, सुखिया कोई ना देखया जो आया इस संसार। आप वैसे भी लोगों के मुंह से भी सुन लो, किसी के मुंह से भी आपने कभी सुना किसी संसारी व्यक्ति के मुंह से ये बात कि संसार सुखरूप है? मेरी तो आयु 72 साल की हो गई है, मैंने तो आज तक सुना नहीं किसी से। ये बहुत संसारियों के मुंह से सुना, संसार में बड़े दुख है, बड़े क्लेश है, बड़ी बेचैनी है, तो बहुत लोगों से सुना। जो अध्यात्म को नहीं जानते उनसे भी सुना, लेकिन चाहे अध्यात्म को जानते हों या ना जानते हों, लेकिन आज तक एक मनुष्य मुझे ऐसा नहीं मिला जीवन में जिसके मुंह से ये सुना हो कि संसार सुखरूप है। कारण यह है कि हर व्यक्ति का अनुभव खुद बोल रहा है ये कि संसार सुखरूप नहीं है, इसलिए ये बात मुंह से निकलती ही नहीं उसके। ये तो सुना होगा कि आजकल बड़ा मजा आ रहा है, तो संसारियों के पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा जीने का रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि संसार में पुरुषार्थ करते रहें, पैसा कमाते रहें, सुख भोगते रहें, और इस चक्र में ऑटोमेटिकली जो दुख आते हैं उनको ही भोगते रहें। ना उनको ये पता है जीव क्या होता है, ना उनको ये पता है पुनर्जन्म क्या होता है, ना उनको ये पता है कि ईश्वर क्या होता है, ना उनको ये पता है कि मन क्या होता है, ना उनको ये पता है कि इंद्रियां क्या होती हैं, कोई विज्ञान का पता ही नहीं है। संसारी लोग तो कंप्लीट डार्कनेस में, पूर्ण अंधेरे में जी रहे हैं, अपने बारे में कोई बोध ही नहीं है उनको। अपने बारे में यदि कोई बोध है तो इतना ही बोध है, शीशे के सामने जब खड़े होते हैं जो दिखाई पड़ता है, बस इतना ही बोध है उनको। तो मेरे बारे में, मेरी देह के बारे में असली राज तो सत्पुरुष खोलते हैं, शास्त्र खोलते हैं। तो इसीलिए जब ये जीव संसार में वास्तव में दुखी होता है, और दुखी होने का मतलब ये होता है उस पर इतने दुख पड़ते हैं या इतना गहरा विवेक उस अंदर जागृत होता है कि उसको ये एहसास हो जाता है कि संसार मेरा ठिकाना नहीं है, यहां तो मैं चैन से जी ही नहीं सकता। तो संसार से आशा उसकी उठ जाती है, ये काम उसके प्रारब्ध के संस्कारों के कारण भी हो सकता है, पिछले जन्मों में हो सकता है वो सतमार्ग पर चला हो, शास्त्रों का उसने स्वाध्याय किया हो सकता है किसी गुरु का भी संग किया हो, उसकी बुद्धि में जागरूकता रही हो, तो संस्कार तो खत्म होते नहीं है, देह का परिवर्तन ही है मौत। तो नई देह में वही जीव उन्हीं संस्कारों के वशीभूत होकर उसको संसार बचपन से ही खोखला नजर आता है, या फिर प्रारब्धवश ऐसा भाग्य उसको मिला कि सब कुछ यहां पे उसका खत्म हो गया या ऐसा जीवन जीने को मिला गुलामी का कि यहां सुख की आशा ही उसके खत्म हो गई। ऐसा मनुष्य दिल से ईश्वर को पुकारता है, हे प्रभु ये संसार तो मेरे रहने की जगह नहीं है, तू मेरी पुकार सुन, तू मुझ पर कृपा कर। वो उसके दिल की पुकार होती है। तो ऐसे यदि किसी की जीव की दिल की पुकार है तो वाणी उसके लिए बड़ा स्पष्ट निर्णय दे रही है। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। ऐसे दुखी जीव की पुकार सुनकर सतगुरु उसके आगे प्रकट होते हैं। मां जी कहते थे धरती कभी सतपुरुष से खाली नहीं रहती, वो जहां भी हैं उसकी पुकार उन तक पहुंच जाती है। हमारी इंद्रियों की दृष्टि में वो दूर होंगे लेकिन आत्मिक दृष्टि से गुरु अंतर्यामी है। जो प्रभु मेरे शरीर की रक्षा कर रहे हैं, शरीर का संचालन कर रहे हैं, वही गुरु रूप में अवतरित हुए। इसलिए मेरे दिल की पुकार मेरे अंदर ही सुनी जाती है, तो वो अंतर्यामी प्रभु गुरु रूप में मेरे सामने प्रकट होते हैं। कोई भी मेरे कान में आके बता जाए, कोई भी मुझको रास्ता बता जाए, प्रभु मुझको गुरु तक पहुंचा देते हैं। तो वो गुरु फिर उसको अंदर का रास्ता बताता है। वो यही सिखाता है, वास्तव में तेरा घर संसार नहीं है, बाहर तो निराशा ही है, संसार है ही दुख रूप। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। चैन यदि कहीं है तो इस देह के अंदर ही है, वहां पहुंचकर जहां प्रभु खुद निवास कर रहे हैं। इसलिए ऐसे गुरु की आवाज को ये शिष्य सुनता है, उनकी बात इसकी बुद्धि में बैठ जाती है। संसार से तो पहले निराश हो चुका है, उसका फाइनल निर्णय हो चुका है, यहां तो जिंदगी की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं। तो पूरे लगन से, पूरे मन से वो अंतर्यामी प्रभु की याद करता है, उसी प्रकार जैसा गुरु ने बताया। उनकी हर बात पर गहराई से चिंतन करता है, क्योंकि अब उसको एक नया प्रकाश मिला है, एक नई रोशनी मिली है, एक जीने का नया तरीका पता लगा है उसको, जहां आशा है, जहां जीवन बर्बाद नहीं होगा। जो संसार के मैं इतने जन्मों दूर भोगता रहा, इससे परमानेंट छुटकारा मुझे मिलेगा। तो इसलिए वो शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, सत्पुरुषों की बातों का मनन करता है, और हर बात उसको यही सिखाती है कि जितना भी मन इंद्रियों का व्यापार है, जितना भी देह संसार का व्यापार है, ये जीव को अल्टीमेटली बेचैन करने वाला है। और सैकड़ों तरीके से, जैसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है, विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न सत्पुरुषों के वचनों के द्वारा ये जैसा वर्णन किया गया है कि संसार केवल दुख रूप ही नहीं है, संसार काल्पनिक है। सपना जैसे रात का, ऐसे जगदा खेत, जैसे रात्रि का स्वप्न है, क्षणिक है, जागने पर पता लगता है कि ये तो मन की कल्पना थी। तो जीव तो सो रहा है, क्योंकि अपने आप को देह समझ रहा है। सत्पुरुष जागे हुए हैं तो ये उनके अनुभव की बात है कि समाधि में जब पहुंचते हैं तब इस बात का निर्णय हो जाता है कि संसार केवल मन की कल्पना मात्र है, इसका वास्तविकता इसकी वास्तविकता कुछ भी नहीं है। इसीलिए शास्त्र में जो भी निर्णय दिया है, चाहे वो समता प्रकाश ग्रंथ हो, चाहे वो समता विलास हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो उपनिषद हो, सब जगह एक जैसा निर्णय है। शास्त्रों के निर्णय में कहीं 1% भी भेद नहीं है। एग्जाम्पल्स में भेद हो सकता है, समझाने के तरीके में भेद हो सकता है, लेकिन निर्णय में कोई भेद नहीं, अटल सिद्धांत है। सारे सत्पुरुषों का आंतरिक एक ही अनुभव है। ये तो हम भी जानते हैं कि ईश्वर सारे संसार में एक है। हम राम को भी ईश्वर कहें, कृष्ण को भी ईश्वर कहें, वो कहते रहते हैं, क्योंकि ये पूछो ईश्वर कितने हैं तो यही कहेगा ईश्वर तो एक ही है। जब ईश्वर एक ही है तो इस देह के अंदर उसके जाने का रास्ता भी एक ही है। महर्षि रमण से एक बार किसी ने पूछा, महर्षि एक चीज बताइए, कोई भक्ति मार्ग से चलता है, कोई ज्ञान मार्ग से चलता है, कोई किसी मार्ग से चलता है, कोई किसी का मार्ग से चलता है, लेकिन विभिन्न मार्गों से चलने पर अंदर कुंडलनी की स्थिति क्या होती है? तो महर्षि रमण कहते हैं, अंदर कुंडलनी की यात्रा ठीक सबकी एक ही प्रकार की होती है। और जो इस भेद को जानते हैं वो जानते हैं कि जो मार्गदर्शन करने आया है वो बाहरी गुरु है, लेकिन जो मेरा अंदर विकास करने आया है वो आंतरिक गुरु है, और उसी का नाम कुंडलनी है। इसलिए महर्षि रमण ने निर्णय दिया, गुरु मंत्र कुंडलनी आत्मा एक ही चीज है। ये ऋषियों का निर्णय। तो हमारी क्योंकि देह बुद्धि है इसलिए ये बातें हमारे निश्चय से ऊपर की हैं। हमें तो नाम और रूप ही नजर आता है, नाम रूप ही ईश्वर है, नाम रूप ही संसार है, नाम रूप ही मैं हूं, इसके ऊपर हमारी बुद्धि है ही नहीं। तो इसलिए इस जीव ने यदि चैन की यात्रा करनी है, जीवन की सही यात्रा करनी है, इस मानव जीवन को यदि किसी ने सफल करना है और सांसारिक क्लेशों से सांसारिक दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना है, इस मौत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है, तो रास्ता अंदर का ही है, वो कुंडलनी मार्ग ही है। जिसको रामकुज परमहंस बार बार कहा करते थे, सारे संसार को मां ही चलाती है, सब कुछ मां ही करती है। ये लोग तो बस ऐसे समझो जैसे किसी डोरी में आपके स्केलेटन को बांध दिया जाए और स्केलेटन डांस करता हो, ये सब तो ऐसे ही नाच रहे हैं, ये सब शक्ति ही न, सबकी देह का संचालन मां ही कर रही है। और उदाहरण दिया करते थे वो कि जिस प्रकार कठपुतली का आपने शो देखा होगा, तो कठपुतली का शो दिखाने वाला विभिन्न कठपुतलियां जो पार्ट अदा करती हैं स्टेज के ऊपर, उसके अंग जो हैं उस व्यक्ति के डोरी से उसकी उंगलियों में बंधे होते हैं। लोग दृश्य देख रहे हैं, कठपुतलियाँ कोई नाच कर रही है, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई मर रही है, कोई खुश हो रही है, कोई दुखी हो रही है, लेकिन ये सारी क्रियाओं का संचालन जिसके हाथ में डोरियाँ बंधी हुई हैं कठपुतलियों की, वो कर रहा है। तो कठपुतली अपने आप निर्जीव है, तो ठीक इसी प्रकार मेरी देह निर्जीव है, इसमें जीवन रूप वो माँ ही है, और सारी क्रियाएं वो माँ ही कर रही है, इसलिए वाणी निर्णय दे रही है, जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। कहाँ है तेरी ताकत, किस चीज का अहंकार कर रहा है तू? आज तू अमीर है तो प्रारब्ध के कारण है, और उस प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने तेरी व्यवस्था की है सारी, वो संभाले हुए, तुझको ABCD भी नहीं मालूम, ये सारी व्यवस्था प्रारब्ध के अनुसार उस प्रभु ने तेरी कर रखी है, और इस देह का संचालन वो कर रहा है, और तेरी देह का ही संचालन नहीं कर रहा है, तेरे बाहर का जो संसार है, बाहर के जो लोग हैं, उसका भी संचालन वही कर रहा है। तो वाणी स्पष्ट कह रहे हैं, तो रामकृष्ण परमहंस में और महाजी की वाणी में कोई अंतर है क्या? समझदार के लिए सारा विशेषण उसके सामने आ जाता है, कोई अंतर नहीं, निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। और वो मां कौन सी है? तो रामकृष्ण परमहंस जो नरेंद्र से कहते थे, विवेकानंद से कहते थे कि भजन गा दो, वो मां वाला भजन गा दो, तो नरेंद्र भजन सुनाते थे रामकृष्ण परमहंस को, ओ कुल कुंडलिनी मां, तू नित्यानंद स्वरूपनी, तू नित्य आनंद स्वरूप है, आधार पद्म निवासिनी, आधार पद्म जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, कहां है जहां पे जेनिटल्स हैं, जननांग हैं, यहां वो स्थान है मूलाधार चक्र का, तो जिसको अंदर कुंडलिनी का अनुभव होता है वो जानता है वो धारा कहां से उठती है, शरीर में कैसे वो फैलती है, सारा मार उसके सामने खुला होता है। मौत के वक्त भी जीव का प्रवेश उसी कुंडलिनी के अंदर ही होता है, वो मां है उसकी। जिस प्रकार जीव का प्रवेश मां के गर्भ में होता है, गर्भ में, मां के गर्भ में जीव पलता है, उसी प्रकार मौत के वक्त भी ये जीव अपने मन इंद्रियों सहित, अपने संस्कारों सहित, अपने प्रारब्ध सहित, कर्मफल सहित उस कुंडलिनी के अंदर सुरक्षित रहता है। इसीलिए जो कुछ भी इसने कर लिया वो अटल हो गया, अब मिट नहीं सकता। जिन संस्कारों की कमाई करके ये कुंडली में जिसने प्रवेश किया जीव ने, क्योंकि इसका मन, इसकी इंद्रियां इसके संग ही है, वो सूक्ष्म है, इसका प्राण जो श्वास है ये भी कुंडली में प्रवेश करती है, इसलिए कुंडलिनी का एक नाम है महाप्राण, कुंडलिनी को महाप्राण कहते हैं, जिससे प्राण उदय होता है, जिसमें प्राण सुरक्षित रहता है। तो कुंडलिनी मेरा प्राण है, मेरा जीवन है, वो वही आंतरिक गुरु है। तो बाहरी गुरु जो मैं देख रहा हूं ये गुरु नहीं है, इसलिए महाराज कहते थे प्रेमी ये खल्लड़ गुरु नहीं है, अंदर जब साधना करेगा जो तुझको बताई गई है, उस साधना के बल पर जब अंदर गुरु का अनुभव होगा तब तू कहेगा कि मैंने गुरु को समझा क्या था, गुरु निकला क्या। महाराज कहते हैं प्रेमी अभी तो तूने गुरु को खिलौना ही समझ रखा है, अभी तो गुरु के शरीर के साथ तू खेल रहा है, तो विचार करने की बात यह है कि सत्पुरुषों को वहम नहीं है, वहम हम अज्ञानियों को है, ईश्वर को अपने हाथ से बना लेते हैं और घर में प्रतिष्ठित कर लेते हैं, मंदिर में प्रतिष्ठित कर लेते हैं, मेरा बनाया हुआ ईश्वर है ये, मैंने इसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, ये मनुष्य ईश्वर में प्राण प्रतिष्ठा करता है। इस तरह हम ईश्वर के खिलौने बना लेते हैं, खिलौने से खेलते रहते हैं सारी जिंदगी, कोई अकल नहीं आती। बड़े त्योहार मनाते हैं, बड़ी देवी पूजाएं करते हैं, बड़े हनुमान चालीसा करते हैं, पता नहीं ईश्वर के नाम पे क्या क्या करते हैं। वो बच्चों का खेल है, जैसे बच्चे तरह तरह के ड्रामा करते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं, एक ये भी खेल है, ईश्वर के नाम पर ईश्वर का ड्रामा हो रहा है। तो हम अभी अध्यात्म मार्ग के राही नहीं है, अध्यात्म मार्ग से खेलने वाले बालक है, अभी तो हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। इसलिए जब तक ये मनुष्य पूर्ण गुरु का संग नहीं पकड़ता, उनका आसरा नहीं लेता, उनकी बातों पर विश्वास करना नहीं सीखता और अपनी बुद्धि के निश्चय को, अपनी बुद्धि के निर्णय को उनके निर्णय से रिप्लेस नहीं करता, जब तक इसकी बुद्धि में यह बात बैठती नहीं कि ऋषि का निर्णय फाइनल होता है, दुनिया का कोई तर्क कोई ताकत उसको काट नहीं सकती। वैदिक काल से आज तक इसलिए शास्त्र का निर्णय नहीं काटा जा सका, यानी कितने शास्त्रार्थ करने वाले संसार से चले गए, लेकिन शास्त्र का निर्णय आज भी वही का वही है। इसलिए सारा शास्त्रार्थ जो होता है, चाहे सारे विश्व में कहीं भी हो, वो शास्त्र पर बेस्ड होता है। दो घंटे का शास्त्रार्थ, दो दिन का शास्त्रार्थ, दो हफ्ते का शास्त्रार्थ चलता रहता था पहले बनारस जैसी जगहों में, लेकिन निर्णय सामने रख दिया जाता था, ये निर्णय है शास्त्र का या ये शास्त्र का वचन है। अब शास्त्रार्थ शुरू होगा वो ये सिद्ध करेगा ये निर्णय ठीक है या गलत है। तो उसको गलत सिद्ध करने के लिए भी कोटेशन जो दिए जाते थे वो शास्त्र के ही दिए जाते थे, मनमाने नहीं, उसकी मान्यता नहीं होती थी। इसीलिए बड़े बड़े प्रखंड विद्वान जो अध्यात्म विद्या का के मास्टर होते थे वो उसमें भाग लेते थे, लेकिन फाइनल निर्णय वही होता था जो शास्त्रोक्त है। इसीलिए ये जो अध्यात्म विद्या है ये थ्योरी नहीं है कि हम समझते हैं कि ये थ्योरी है। इसलिए अध्यात्म भी सीखना है तो केवल शास्त्र से सीखा जाएगा, केवल शास्त्र से। यदि सत्विचार करना है तो सत्विचार केवल उसे कहते हैं जो शास्त्र का वचन होता है, जो सीधी ईश्वर की आवाज है, सीधी ईश्वर की राइटिंग है। इसलिए वहां संशय नहीं होता। इसलिए महाजी कहते थे प्रेमी सत्विचार श्रवण करना चाहिए, सत्विचार का अध्ययन करना चाहिए, सत्विचार पर मनन करना चाहिए, गहरा मनन करना चाहिए। हर जगह सत्विचार की बात करते हैं, हम विचार की बात करते हैं, अरे हम विचारहीन हैं, जो हमने स्वरूप को ही नहीं समझता, देह समझ रहा है तो वो विचारहीन है, वो क्या विचार करेगा। इसे विचार होता है गुरु की बात पर, शास्त्र वचन पर, मनुष्य की बातों पर विचार नहीं होता है। मनुष्य की बात पर विचार होता है लेकिन जो आपके सांसारिक यूनिवर्सिटीज हैं वहां होता है, सांसारिक कॉलेजेस हैं यहां विचार होता है, लेकिन जीवन का निर्णय वहां नहीं होता। वहां तो कॉमर्स पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, जियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, बॉटनी पढ़ाई जाएगी, आपको सब विद्या पढ़ाई जाएगी, लेकिन सारी की सारी ये मृत साइंस है, क्योंकि जड़ विद्या है, जीवन विद्या नहीं है। जीवन विद्या ईश्वर पढ़ाता है। जो गुरु रूप में संसार में ऋषि रूप में अवतरित होता है वो पढ़ाता है। इसलिए किसी भी काल में किसी भी गुरु पर आपका पूर्ण फेथ आ जाए, चाहे कृष्ण ही आपका गुरु क्यों ना बन जाए, कृष्ण की पूजा करने वाले तो करोड़ों मिलेंगे, लेकिन कृष्ण को गुरु बनाने वाले शायद 100 भी ना मिले आपको। भला तो उसका होगा जो कृष्ण को गुरु बनाएगा, कि कृष्ण तो वही बात कहेंगे ना जो महात्मा मंगतराम जी ने कही, जो महर्षि रमण ने कही, जो रामकृष्ण परमहंस ने कही, जो कबीर ने कही, जो ईसा ने कही, कृष्ण तो वही बात कहेंगे, क्योंकि ईश्वर एक है। और महर्षि रमण कह रहे हैं कि सारे संसार में गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। तो बताइए हमारी बुद्धि कहां खड़ी हुई है और सत्पुरुषों का निर्णय क्या बोल रहा है। तो कितना गहरा ज्ञान मेरी बुद्धि में है और कितना अहंकार, बड़ा विद्वान हूं मैं, बड़ी किताबें पढ़ी है मैंने, बड़े लोगों को पढ़ाता हूं मैं, इतना घोर अज्ञानी और इतना अहंकार पढ़ाएगा। तो कहते ना कि ऊंट को भी अहंकार हो जाता है मैं बड़ा लंबा हूं, लेकिन पहाड़ के नीचे खड़ा होता है तब पता लगता है तो कितना लंबा है। तो गुरु शिक्षा पर जब मैं अपनी बुद्धि को तोलता हूं तब अपनी मूर्खता का एहसास होता है। मैंने डबल PhD कर रखी है, अपनी मूर्खता का एहसास इस जीव को तब होता है। इसलिए संसार दुख रूप है ये निर्णय आपका नहीं चलेगा, ये निर्णय शास्त्र का ही चलेगा, वाणी का ही चलेगा। महाराज जी की वाणी पढ़ के देखो, समता विलास में वो उसका पूरा खाका खींच रहे हैं आपकी मदद के लिए। वहां तो निर्णय हो चुके हैं, ये आपको संसारिक एग्जाम्पल दे देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वाणी बड़ी गहरी बात करती है लेकिन सरल बातें भी करती है, हमें समझाने के लिए कहते हैं जरा विचार करके तो देख। जब से जीव गर्भ में आया, जब से मैंने गर्भ में प्रवेश किया, विचार करके देखो 9 महीने 10 महीने मैं गर्भ में रहा, क्या वो सुख के दिन थे? उसके बाद बाहर संसार में आया, 5 साल तक मुझे मलमूत्र का भी होश नहीं अपने, क्या वो अच्छे दिन थे? क्या दुर्दशा होती थी? पेट भरा है दूध से, रो रहा हूं। यहां आप रात को आवाज तपोभूमि में सुनते होंगे, पेड़ पर किसी बंदर के बच्चे के रोने की आवाज रात भर आती होगी आपको। जो नए बच्चे होते हैं इनके, सारी रात वो ची 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 करते ही रहते, ना खुश होते हैं ना मां को सोने देते। तो बचपन में मेरी क्या हालत होती है, मैं कितना मां को परेशान करता हूं। तो वो क्या जीवन 5 वर्ष तक का ये सुखरूप है या दुखरूप है? ये समझदारी का जीवन है या बेसमझी का जीवन है? उसके बाद जब मैं खेलने लायक हो जाता हूं, बाहर घूमने लायक हो जाता हूं, तब मेरे नाक में नकेल डाल दी जाती है। माँ बाप बाहर ही नहीं जाने देते मुझे, कि सड़क पे एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं गिर पड़ेगा, कोई मार देगा, हर समय मुझको सख्त नजर रखी जाती है। तो बालक कितनी गुलामी का जीवन जीता है, अंदर से क्या वो बेचैन होता है, आप उसकी मानसिकता समझ सकते हो? हर मामले में उसको चेक किया जाता है। और बालक की इच्छा क्या है, मन क्या कह रहा है, कि मुझको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। उसको स्वतंत्रता में सुख होता है, मन चाहे तरीके से खेलना चाहता है, मन चाहे तरीके से मित्रों के पास रहना चाहता है, मन चाहे तरीके से बाहर घूमना चाहता है, जो मन करे वो खाना चाहता है, लेकिन हर चीज में रेस्ट्रिक्शन है उसकी। माता पिता को पता है यदि इसके मन के आधार पर इसको छोड़ दिया तो ये बिगड़ जाएगा, इसका जिंदगी नष्ट हो जाएगी, इसे बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद स्कूल में धकेल दिया जाता है। हर वर्ष कष्ट का होता है बच्चे के लिए, खेल की उम्र होती है उसकी, 5 किलो का बस्ता उसके कंधे पर ला दिया जाता है। घर में होमवर्क, स्कूल में क्लासेस, बस में जा रहा है बेचारा तो वहां परेशान हो रहा है, कहीं उसके कोई शैतान साथी मिल गए तो वो परेशान कर रहे हैं। इतनी अज्ञानता के कारण परेशानी होती है बच्चे को। जो बच्चे पालते हैं उनको पता है कि हर रोज बच्चे कंप्लेंट करते हैं, हर रोज उनकी रक्षा करनी पड़ती है, हर रोज उनकी देखभाल करनी पड़ती है, हर रोज उनका होमवर्क कराना पड़ता है, स्कूल की अलग सुनो, बच्चों की लड़ाई होती है उसकी अलग सुनो। तो कितना अज्ञानता का जीवन, ये सुखी सुखी जीवन है ये। और हम भी अपने दिन जानते हैं जब स्टूडेंट थे कि हर साल जब परीक्षा आती है तो उस समय मन में एक होता है कि चलो अभी तो 2 महीने मेहनत कर लेते हैं डट के, परीक्षा पास हो जाएगी फिर चैन से खेलेंगे। वो परीक्षा पास हो जाती है, कितनी बेचैनी लेके आप, कितना प्रेशर लेके आप वो जीवन जीते हो। परीक्षा पास हुई, रिजल्ट आया, स्कूल ने नया बक्सा थमा दिया, अगले साल की किताबें आकर बांध दी, समर वेकेशंस हो रही हैं, ख्वाब देखे हैं खेलने के, नानी घर जाने के, वहां बस्ता बंद गया। और आजकल जो मॉडर्न स्कूल है ना, तो और प्लानिंग करते हैं कि बच्चों को खाली रहने ही नहीं देते, वो समर कोर्सेस चलाते हैं, नई नई चीजें बच्चों को सिखाते हैं। सीखने का इतना प्रेशर होता है बच्चों पे, उनकी आजाद जिंदगी तो है ही कुछ नहीं, बचपन तो उनका खो गया कहीं। और हर वर्ष नई क्लास आती है, नया बोझ आता है, मैं पूरे साल उसको बोझ को उतारने की तैयारी करता हूं, और ये प्रक्रिया मेरी 25 साल तक चलती रहती है। जिंदगी का जो गोल्डन पीरियड था वो ऐसी चिंता फिक्र दुख में बोझ में कट गया मेरा। उसके बाद जवानी सवार हो जाती है, खून गर्म हो जाता है, फिर शादी की याद आती है, मेरी शादी होनी चाहिए। और कितना लोग शादी के लिए परेशान होते हैं, कितना माँ बाप परेशान होते हैं, कितना बोझ होता है शादी का परिवार के ऊपर। शादी हो भी गई तो कितने दिन की उमंग आपकी पूरी होती है, कितना बड़ा कर्तव्य आपके ऊपर खड़ा हो जाता है, आकर कितना बड़ा बंधन आपके साथ बंध जाता है। परिवार पालना है आपने, बच्चे पालने हैं तूने, तेरे जीवन की जो 25 साल कहानी चलती रही है अब तेरे बच्चों की वही कहानी 25 साल तक चलेगी, तू तो बूढ़ा हो जाएगा। बुढ़ापा सुखरूप होता है, कोई याद आता है किसी को, कोई बूढ़ा होना चाहता है? हम सब जानते हैं कि बुढ़ापा निराशा लेकर आता है, क्यों कि हर वर्ष उसको मौत याद आती है, अब कहीं मर ना जाऊं, अब कहीं शरीर में कोई रोग ना आ जाए। आजकल छोटा परिवार होता है, बच्चे हम खुद पढ़ाते लिखाते हैं, वो हमको छोड़ के चले जाते हैं बड़ा बनने के लिए, मैंने ही बड़ा बनाया था उनको, मैं अकेला रह जाता हूं। अब डर लगता है कहीं बीमार हो गया तो मेरी कौन देख रेख करेगा, चाहता हुआ भी मैं बच्चों को बुला नहीं सकता क्योंकि पता है कि वो आने की स्थिति में नहीं, बड़े आदमी हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, वो कैसे छोड़ के आ सकते हैं। तो विचार करके तो देखो क्या दुर्दशा होती है मेरी। तो वाणी सारा नक्शा खींच रही है आपके जीवन का, पढ़कर तो देखो, यदि उस पर गहरा मनन करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा जीवन दुखरूप है ये सुखरूप नहीं है। तो इसलिए जो वाणी के मनन पर जिसने वक्त खर्च किया है, शास्त्रों के अध्ययन मनन पर जिसने वक्त खर्च किया है, उसके निर्णय होने में देर नहीं लगती, वो कंफ्यूजन में नहीं जीता, क्योंकि केवल वाणी ये निर्णय नहीं देती कि जीवन दुखरूप है, तू कौन है ये भी तो निर्णय दे रही है, तू जीव है, और तेरे दुख का कारण संसार नहीं है, तेरे दुख के कारण तेरे दुख का कारण तेरा अपना मन ही है। इसीलिए वो इस दुख के स्रोत से, इस मन से गुरु निर्मल होने की बात करता है, मन से मुक्त होने की बात करता है। तो वासना भी मेरी विकृत है, इच्छाएं भी मेरी विकृत है। तो सबसे पहले गुरु कहता है इन इच्छाओं में सुधार कर, सोच समझ के ऐसी इच्छा को जगह दे मन के अंदर जो सादे जीवन से संतुष्ट हो सके। ईमानदारी की कमाई में तेरा गुजारा चल सके। और साथ ही तो अंदर की यात्रा बताती है, तो शास्त्र की बात अंदर की यात्रा बताती है कि चैन तो अंदर है, अमृत तो इस देह के अंदर है। तेरा दसवां द्वार ये अमृत कुंड है, ये परम लोक है, ब्रह्म लोक है। ब्रह्म लोक तेरी देह में स्थित है, तो कहां देवताओं के चक्कर में मारा मारा घूम रहा है। तो इसलिए पूर्ण गुरु का जब आश्रय पकड़ता हूं तब उसके बताए हुए तरीके से अंतर्यामी प्रभु की पूजा करता हूं, मंत्र उपासना करता हूं। उपनिषद कह रहा है नाम ब्रह्मेति उपासते, नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए। नाम ब्रह्म है, लेकिन कौन सा नाम जो गुरु से प्राप्त हुआ है, जिसकी परमिशन गुरु ने दी है जाप करने की। तो इसीलिए पूर्ण गुरु का आश्रय लेकर अंदर की यात्रा तय होती है, शांति की यात्रा तय होती है, आनंद की यात्रा तय होती है। वो आनंद रूप कुंडलनी, वो शांति रूप कुंडलनी तेरे देह के रोम रोम में बसी हुई है, तुझको होश ही नहीं है। तो मरा मरा जरा से सुखों के लिए घूम रहा है संसार। तो हम लोगों की बुद्धि मारी गई, यदि ये कहा जाए बुद्धि है ही नहीं तो ज्यादा अच्छा हो। अरे जिस बुद्धि से तेरा कल्याण ही ना हो पाए वो बुद्धि हीन है तो, या बुद्धिमान है तो विचार करके तो देख। मेरी सोच और मेरी करनी तो मुझे डुबो रही है, रजोगुणी तमोगुणी संस्कार का निर्माण कर रही है। तो मैंने बच्चों को पैसे वाला तो बना दिया काम सिखा सिखा के, लेकिन मुझे मूर्ख को यह पता नहीं मैंने बच्चों को डूबने वाला बना दिया। अब मेरी जो ट्रेनिंग थी उसी से डूबेंगे वो तो। लेकिन ये बात तब नजर आती है जब बुद्धि आपकी होश में आती है, अभी तो बेहोश बुद्धि है, ये कहां नजर आती है। तो इसलिए महाजी कहते हैं सत बुद्धि धर बावरे, देखो वाणी क्या कह रही है, मैं बावला हूं, आधा पागल हूं मैं। इसलिए कह रहे हैं सत बुद्धि धारण कर, और सतबुद्धि कहां से आएगी, वो सतगुरु से आती है, सदगुरु के वचन से आती है, सदगुरु की वाणी से आती है, शास्त्र से आती है। तो जब मैं शास्त्र का स्वाध्याय करता हूं, गुरु की बात पर मनन करता हूं, तब मेरा यही निर्णय होता है कि संसार दुख रूप है। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। इसलिए संसार में जीने का रास्ता क्या है, काम भोगान निवर्तय, कामनाओं भोगों से निवृत्ति का रास्ता मैंने अपनाना है, और अंदर प्रभु की स्मृति का रास्ता अपनाना है, अंदर प्रभु की याद करनी है, और उस अमृत रूप ईश्वर का इस देह के अंदर दर्शन करना है और जीवन सफल करना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।